हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय एक श्लोक क्रमांक 15, 16, 17 और 18 की चर्चा करेंगे। श्लोक क्रमांक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्म वृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्न अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। इसके ऊपर श्रील बलदेव विद्याभूषण भी कहते हैं कि ऋषिकेश का अर्थ है कि भगवान पांडवों की जो सेना है उनकी इंद्रियों को बहुत ही दक्षता पूर्वक निर्देशित करेंगे और इस प्रकार से युद्ध में उनको विजय प्राप्त कराएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस जगत में हम अपनी इंद्रियों का जो प्रयोग कर रहे हैं भोग करने के लिए भी, उसकी शक्ति भी भगवान ही देते हैं। इन इंद्रियों को संचालन करना हमें स्वयं को नहीं आता है। जैसे मैं भगवान के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ तो मैं कुछ सोच रहा हूँ और सोच करके मैं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे विचार मेरी वाणी के रूप में कैसे प्रस्तुत हो रहे हैं ये मुझको नहीं पता है। ऐसे ही हम अपने हाथों को चलाते हैं, पाँव को चलाते हैं, तो हम इतने अभ्यस्त हो गए इन कार्यों करते करते, ये सोचते भी नहीं है कि ये कार्य कैसे हो रहे हैं, हमको इस बारे में कोई पता नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति है जो मेरे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये तो मैं समझ रहा हूँ, जैसे मेरा हृदय धड़क रहा है, आप लोगों का हृदय धड़क रहा है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ तो कोई तो करवा रहा है इसको, एकदम टाइम से हृदय मेरा धड़क रहा है। तो शास्त्र बताते हैं कि ये सब भगवान ऋषिकेश भगवान कृष्ण के द्वारा हो किया जा रहा है। जैसे भगवान गीता में भी बोलते हैं, प्राण पान समायुक्ता पचाम्यम अन्नम चतुर्विधम, मैं वैश्वानर के रूप में सबके पेट में रहता हूँ और पान अपान वायु के संग मिलकर के खाने को पचाता हूँ। तो यानी खाने को चखना, खाना बनाना और खाना हजम करना, इन सभी के लिए हम भगवान पे ही आश्रित हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे आया है ऋषिकेशो। और ये इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान हमारे हृदय में क्यों हैं। भगवान हमारे हृदय में है ताकि वो देखें, कभी तो जीवात्मा इच्छा करेगा उनकी सेवा करने के लिए। भगवान निर्देशन दे रहे हैं कि अगर भोग करना चाहते हो ठीक है, ये भोग कर लो, ये भोग कर लो, लेकिन भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते हैं। अनुमति देते हैं लेकिन प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन जब जीवात्मा भगवान की सेवा करने की इच्छा करता है तो तुरंत ही भगवान उसके हृदय में बैठे रहते हैं और उसको निर्देशन देना चलते करने लगते हैं। आप अपने जीवन में देखिएगा, भक्ति करते रहेंगे, और हमारा भी ऐसा अनुभव है कि बहुत बार कोई जिज्ञासा होती है, आध्यात्मिक जिज्ञासा, और प्रभुपाद जी के पुस्तक शास्त्र श्रीमद् भागवतम भगवद्गीता खोलते हैं और तुरंत ही वो उस तात्पर्य से उस श्लोक से हमें उसका अर्थ या कह सकते हो जिज्ञासा का उत्तर मिल जाता है। तो दिखाता है कि परमात्मा के रूप में भगवान हमको प्रेरणा दे रहे हैं किस प्रकार से उस जिज्ञासा का उत्तर हो। एक इम्पॉर्टेंट बात है, कल एक व्यक्ति मुझसे बोल रहे थे कि कभी कभी भगवान हमसे पर्सनल एक व्यक्ति की तरह बात करते हैं, हमें स्वप्न में आते हैं, हमें कोई आदेश देते हैं। तो देखिए, मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन भगवान पर्सनली अगर कोई व्यक्ति वाकई किसी के वाकई आ रहे हैं भगवान, तो उस भक्त की स्थिति बहुत उच्च कोटि की होती है। उसके बाद जब वो जागृत अवस्था में आएगा, ऐसे व्यक्ति को इस जगत के सुख दुख, इस जगत के प्रलोभन प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो खैर वो केस कुछ भी हो, लेकिन भगवान भगवद्गीता के रूप में प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आ रहे हैं और हमको ज्ञान देते हैं। भगवद्गीता के माध्यम से, साधुओं के माध्यम से। तो ये जो प्रत्यक्ष हेल्प है उसको ज़्यादा, इस पर हमें ज़्यादा रिलाई करना चाहिए, ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। स्वप्न की बात पे हम बहुत अधिक विश्वास नहीं कर सकते कि वो पूरी तरह सत्य है या नहीं है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है और देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इस प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। तो आप ये सोच सकते हो कि इसमें ऐसा कौन सा विशेष बात है। इस जगत में भी कोई व्यक्ति अगर इंजीनियरिंग का कार्य करता है तो उसको हम इंजीनियर बोलते हैं, कोई वेल्डिंग का कार्य करता है तो उसको हम वेल्डर बोलते हैं। तो ये कोई अपने कार्य के अनुसार किसी का नाम रखा जाए तो, या समाज की तरह रख दिया जाए, तो ये कौन सी बड़ी बात है, समझ में आना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। भगवान के सारे कर्म बड़े दिव्य हैं। जैसे भगवान हमारे इंद्रियों को आनंद देते हैं, तो ये आनंद कौन सा है, ये दिव्य आनंद है, सच्चिदानंद वाला आनंद है, भक्ति का आनंद देते हैं हमारे इंद्रियों को। और वसुदेव के पुत्र हैं, इसमें कौन सी दिव्यता है, भगवान अजन्मा है, वो किसी के पुत्र नहीं है, फिर भी वसुदेव जी की भक्ति के कारण, माता देवकी की भक्ति के कारण उनके बेटे बनना स्वीकार करते हैं। उसी तरह माता यशोदा के प्रति और उसी तरह से अर्जुन के प्रति, अर्जुन भान भक्त हैं इस कारण से उनका सारथी बनने के लिए भी तैयार हैं। तो इससे ये समझ बोध होता है, हमें समझ में आना चाहिए कि भगवान की जो लीलाएं हैं, जो कार्य हैं, वो भी दिव्य हैं। और उन कार्यों के अनुरूप जो भगवान के नाम जाने जाते हैं, रखे जाते हैं तो नहीं कहना चाहिए, जाने जाते हैं, वो भी पूरी तरह से दिव्य हैं और शाश्वत हैं। जैसे भगवान माता यशोदा के शाश्वत पुत्र हैं, तो उसी प्रकार से इनका जो नाम है यशोदा नंदन, ये भी पूरी तरह से शाश्वत है। ऐसा हमारे समाज में प्रकट होता है, जैसे भगवान प्रकट होते हैं इस जगत में माता देवकी के गर्भ से, माता यशोदा के गर्भ से, उसी प्रकार से भक्तों के मुख से भगवान का नाम प्रकट होता है स्वतः स्फूर्त भाव से, अपनी खुद की शक्ति से। जैसे कि भगवान का नामांकन करने के लिए गर्गाचार्य जी आए थे नंद बाबा के पास, तो नंद बाबा ने कहा आप आए हैं मेरे बच्चों का नाम रख दीजिए। तो बहुत लंबी कथा है, काफ़ी बार चर्चा होती, तो वो बोलते हैं इदानीम कृष्णताम गता, कि ये जो आपका बच्चा है इसका नाम अभी इसका जो वर्ण है वो कृष्ण है और इसका नाम भी उन्होंने कृष्ण रखा। और बलराम जी का नाम उन्होंने बलराम जी का नाम मतलब दूसरे जो बच्चे थे बड़े वाले, उनका नाम बलराम रखा या संकर्षण रखा। तो इस प्रकार से हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि गर्गा जी नाम रख रहे हैं, गर्गा जी की जिह्वा से भगवान का नाम प्रकट हो रहा है, भगवान का नाम भगवान से भिन्न है। और जैसे भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, ऐसे ही भगवान का नाम अपनी इच्छा से प्रकट होता, प्रकट और अप्रकट इस जगत में होता है। ये समझ में आना चाहिए। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं इसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडंबासुर का वध। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि व्यक्ति केवल खाता रहे और कुछ कार्य ना करे तो वो तो अच्छा नहीं बोला जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि एक गाड़ी है उसका एवरेज अच्छा होना चाहिए, कम डीजल दें या पेट्रोल दें और वो लंबा चले, तब ऐसी गाड़ी को अच्छा माना जाता है। श्रील प्रभुपाद जी इसमें थोड़ा मजाक करते थे, बिग बिग मंकी बिग बिग बेली जंपिंग सेलोन मेलंकली। कहने का अर्थ यह है कि जब भगवान श्री राम को आवश्यकता ये हुई कि व्यक्ति कौन व्यक्ति जाकर के लंका को पे कूद के उस लंका तक कूदेगा, तो जितने सारे जो भी थे वहाँ पे बंदर थे उसे पहले खाने में तो बहुत कह सकते हैं आगे थे, लेकिन जब लंका पे सागर के ऊपर कूदने की बात आई तो बड़े दुखी हो गए, कहते हम तो नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से भीम नहीं थे, भीम अगर उनकी जठराग्नि बड़ी तीव्र थी तो उनके कार्य भी बड़े महान प्रकार के थे। तो इसी प्रकार से भक्त प्रसाद पाए, अपने शरीर का ध्यान रखे, लेकिन भगवान की सेवा करने में फिर आलस नहीं करना चाहिए। खैर ये छोटी सी विनोद की बात थी। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजा जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, ना तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात आ रही है कि ये जो इनके शंख बताए गए हैं, ये शंख सब दिव्य हैं, और इससे इंगित होता है कि ये इनके पास ऐसे और भी शंख थे जो कि दिव्य थे। ठीक है। अनंत विजयम राजा, श्लोक क्रमांक 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः श्रीखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्च पराजितः द्रुपदोऽसौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं है। श्लाघनीय मतलब प्रशंसनीय नहीं है। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। श्री बलदेव विद्याभूषण यहाँ बता रहे हैं कि राजा युधिष्ठिर को राजा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इससे पहले उन्हें बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ किया था और पूरे विश्व पे अपना आधिपत्य स्थापित किया था। लेकिन वैसे इनको राजा के रूप में स्वीकृति युद्ध के बाद ही मिली थी। दूसरा शब्द है यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कह सकते हैं जो युद्ध करने वाले लोग हैं पांडवों की तरफ से, इनके नाम रखे जा रहे हैं, जबकि इससे पहले वाले श्लोकों में भीष्म पितामह के अलावा और किसी का नाम नहीं रखा जा रहा है जब उन्होंने शंख बजाए। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि जो कौरवों की सेना है उसमें जो युद्ध करने वाले लोग थे उनकी शक्ति पांडवों की जो सेना है, सेना के जो सेनापति हैं उनसे कम थी। और एक और बात है, सात्विकी के इसमें सात्विकश्च अपराजिता, मतलब सात्विकी को कभी भी युद्ध में पराजय प्राप्त नहीं हुई थी। तो इन सब चीज़ों के द्वारा ये इंगित हो रहा है कि कौरवों की जो कह सकते हैं पराजय है वो निश्चित है। और यहाँ एक पृथ्वीपते शब्द आया है। पृथ्वीपते शब्द का अर्थ ये है कि पृथ्वीपते शब्द जो है ये धृतराष्ट्र जी को इंगित कर रहा है। धृतराष्ट्र जी पृथ्वी के पति थे, यानी कि पूरे जगत के राजा थे। उनका कर्तव्य था कि हर व्यक्ति को, प्रजा मतलब जो भी राज्य में जन्म लेता है, एक छोटा कीड़ा भी, उसको भी अपने बच्चे की तरह पालन करें। लेकिन अपने बेटों की आसक्ति के कारण वो धर्म का पालन नहीं कर पाए, उल्टा अधर्म के तरफ उन्हें साथ दिया और जो धर्म परायण पांडव थे उनके प्रति लगातार द्वेष करते हुए उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। तो ये बोल रहे हैं आपके जो धृतराष्ट्र को सुना रहे थे इस कथा को, संजय बोल रहे हैं और इसके द्वारा इंगित कर रहे हैं कि इस प्रकार की कुनीति का प्रोत्साहन देने के कारण वो संपूर्ण पृथ्वी के नाश का कारण बन सकते हैं, या संपूर्ण पृथ्वी से जितने भी क्षत्रिय हैं उनके नाश का कारण बन सकते हैं। दो श्लोकों की चर्चा और करेंगे, उसके बाद अर्जुन की वाणी आएंगी। सघोषोधार्थ राष्ट्राणाम हृदयानी विदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुम्लोभ्यन अनुनादयन। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है धृतराष्ट्र के पुत्रों को, ये नहीं लिखा है कि पांडवों के पुत्रों को, पांडवों को या उनकी तरफ की सेना के किसी भी व्यक्ति को। ये अद्भुत बात है कि जो इतना बड़ा उद्घोष हुआ तो दोनों तरफ क्षत्रिय थे, तो अगर एक तरफ के क्षत्रियों के हृदय में कंपन हो रहा है तो दूसरी तरफ के क्षत्रियों के हृदय में भी होना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। अद्भुत है, बहुत अद्भुत लाइन है। आप देखें, 11 अक्षौहिणी सेना सामने और पांडवों की तरफ खाली 7 अक्षौहिणी, तो और उधर भी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे महान महान योद्धा, फिर भी बोला जा रहा है कि पांडवों के पक्ष के जितने भी वीर थे उनका उत्साह बढ़ गया इन शंखों की ध्वनि से, और उस तरफ कौरवों के जो पक्ष के लोग थे उनका उत्साह युद्ध होने से पहले ही कम हो गया। देखिए कितनी अद्भुत बात है, अगर कोई कार्य कठिन है और हमारा उत्साह है तो संभावना है कि हम उसे कर लेंगे, लेकिन अगर कार्य कितना भी आसान हो, हमारा उत्साह नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है, तो व्यक्ति सामान्य से कार्य को भी नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम बीमार हैं और व्यक्ति कोई हमको दवा ला के देता है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो अगर हमें उस व्यक्ति पर श्रद्धा नहीं है या दवा के बारे में नहीं जानते हैं, तो भले ही वो दवा बड़ी कारगर हो और हमको तुरंत ठीक कर दे, लेकिन हम उसको लेने में झिझकते रहेंगे, पूरा जीवन भर झिझकते रहेंगे। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। कहने का अर्थ है, हरे कृष्ण मंत्र है, कलिसंतरण उपनिषद में बताया गया, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं, महान सारे साधु लोग कर रहे हैं, फिर भी कुछ लोग जीवन भर यही सोचते रहते हैं हरे कृष्ण काम करेगा कि नहीं करेगा। जब आप हरे कृष्ण पे काम करेंगे यानी उसका उच्चारण करेंगे, तब हरे कृष्ण आपके ऊपर लाभ करेगा, आपको लाभ करेगा। इसके लिए आपको स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमको समझ में आना चाहिए। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः, श्लोक क्रमांक 20 बोल रहा हूँ, प्रवृते शस्त्र संपाते धनुर्उद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम् महीपते। उस समय हनुमान से अंकित, कपिध्वजा शब्द को प्रभुपाद ले रहे हैं, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। उद्यत हुआ मतलब बहुत उत्साह के संग वो युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुए। ऐसा नहीं था कि उनको युद्ध में कोई डर था या कोई आसक्ति थी। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। युद्ध प्रारंभ ही होने वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण के युद्ध में राम की सहायता की थी जिससे राम विजय हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित हैं। भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहां भी राम रहते हैं वहां उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु के भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। थोड़ी सी कथा है। एक बार भीम द्रौपदी के लिए कमल लेने के लिए एक हिमालय की तरफ पर्वत में जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बंदर है और उसकी पूंछ पड़ी हुई है। तो भीम बहुत कल्चर्ड है, मतलब बहुत ही सभ्य व्यक्ति क्षत्रिय थे, तो उस पर उनकी उनकी पूंछ के ऊपर वो टापना नहीं, मतलब उसको लांगना नहीं चाहते थे। तो इस कारण से उन्होंने उन्हें कहा कि आप कृपया अपनी पूंछ को हटा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं, उस बंदर ने बोला कि मैं तो बहुत अशक्त हूँ, वृद्ध हो गया हूँ, ऐसा करिए आप ही हटा लीजिए। तो भीम को कहा, अरे ये तो बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत ही अपमान करने वाली बात हो गई। आप सोच रहे हो कि मैं इतना अमर कब शक्तिशाली नहीं हूँ कि अभी पूछ भी नहीं हटा सकता। तो कहते नहीं, आप तो शक्तिशाली हैं, आप प्रयास कर लीजिए, करके हटा दीजिए। तो भीम अपनी पूरी शक्ति यानी कि 10,000 हाथियों का बल लगा के भी उस पूंछ को नहीं हटा सके। तब वो समझ गया कि ये कौन है। तो बोले, मैं समझ गया हूँ कि आप मेरे बड़े भाई हनुमान जी हैं, वायु के पुत्र। तो फिर हनुमान जी अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, असली स्वरूप को, और वो भीम और कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम क्या वरदान चाहते हो। तो उन्हें बोला कि हम युद्ध होने वाला है आगे, आप हमारे युद्ध में सहायता कीजिएगा। तो उन्हें बोला कि मैं इस समय युद्ध तो नहीं करूँगा, लेकिन आपकी युद्ध में सहायता करूँगा अर्जुन के ध्वजा के ऊपर चिन्ह के रूप में रह करके, और जब कोई शत्रु उनसे युद्ध करने आएगा तो मैं चिंघाड़ूंगा, और चिंघाड़ को सुन के ही उनका हृदय फट जाएगा, वो युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम समझ रहे हैं कि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण, राम के भगवान श्री राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, भगवान कृष्ण उपस्थित हैं और उनके सेवक हनुमान उपस्थित हैं। इस से भगवान के इस कह सकते हैं भगवान की तरफ से पक्ष जो युद्ध हो रहा था। इससे एक और बात समझ में आनी चाहिए कि जो व्यक्ति भगवान की इच्छा के अनुसार कुछ कार्य करने का प्रयास करता है तो सामने की जो मतलब मुसीबतें हैं या जो कठिनाइयां हैं वो कितनी भी कठोर क्यों ना हो, वो भगवान की कृपा से सब अपने आप दूर हो जाती हैं। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात कृष्ण हैं, उनकी इच्छा है कि इस पूरे जगत में हरि नाम का प्रचार हो। तो हम लोग देखेंगे कि हमारी शक्ति बहुत कम है, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो भक्त लोग बहुत कम हैं और अभक्तों की संख्या अधिक भी है, और वो लोग भौतिक रूप से बहुत शक्तिशाली भी हैं। लेकिन हमारा जो युद्ध है वो किसी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि उन दुर्गुणों से है जो उनके हृदय में निवास करते हैं। तो भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, और नाम प्रचार करना की सेवा भी नाम की सेवा है और भगवान कृष्ण की सेवा है। इस बात को भगवान बोलते हैं, जो इस गीता का ज्ञान दूसरों को देता है, भक्तों को देता है, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो अगर इस प्रकार से हम भगवान की इस वाणी का प्रचार करने के लिए कुछ भी प्रयास करते हैं तो भगवान के असीमित अनुकंपा हम पर होगी, और सामने आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं वो भगवत कृपा से नष्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ भगवान हमारी बुद्धि हमारी इंद्रियों को निर्देशन करेंगे कैसे हम उनकी सेवा ठीक से कर सकें। हमें केवल कृष्ण पे विश्वास रखना है, भगवद गीता के अनुसार अपने जीवन को चलाना है, जैसे कि अर्जुन यहाँ पे कर रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। श्रील बलदेव विद्याभूषण इस पे छोटा सा एक और अच्छा कमेंट करते हैं कि जब धृतराष्ट्र के पुत्रों के भय के बारे में बताया तो अब इस श्लोक में 20वें श्लोक में ये अर्जुन के उत्साह के बता अर्जुन और पांडवों के उत्साह के बारे में बता रहे हैं। अर्जुन ने भीष्म को देखा जो कि युद्ध करने की इच्छा से थे, और वो चाह रहे थे कि जो उनका जो पांडवों का उत्साह है उसको वो निरस्त करें, और अर्जुन के तो इस कारण से अर्जुन इस प्रकार से देखा था। तो आगे अर्जुन इस बात को प्रश्न करेंगे, आगे आगे हम उसको अगले श्लोकों में देखेंगे। और हनुमान जी का चिन्ह जो था उनके फ्लैग के ऊपर, उनके उनके ध्वजा के ऊपर, इससे इंगित होता है कि हनुमान जी का आशीर्वाद उनके ऊपर था, कृपा उनके ऊपर थी, जिन हनुमान जी ने भगवान श्री राम के लिए महान महान कार्य पहले किए थे। इसलिए अर्जुन को कोई युद्ध में डरने की आवश्यकता नहीं थी। हरे कृष्ण।